नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में लोकतंत्र के मदारी राजनीतिक दल और इनके इशारे पर नाचने को मजबूर जनता। चुनाव का माहौल देखकर जनता भी उत्साहित है कि वह एक बार फिर से उनके हितों के लिए काम करने वाली सरकार का चुनाव करेगी। जनता उत्साहित भले ही हो कि उनके लिए काम करने वाली सरकार का चुनाव हो रहा है, लेकिन इसमें उनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। अगर भागीदारी होती तो राजनीतिक दल उनकी पसंद के उम्मीदवार और जिताऊ उम्मीदवार चुनते हैं। इसमें जनता की भागीदारी कहाँ है? महान राजनीतिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती है। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी जी नमस्कार साहब, और बहुत बहुत बधाई कि आपने मतदाताओं की भूमिका लोकतंत्र में क्या हो सकती है और किस तरह से राजनीतिक तंत्र अपनी हितों की पूर्ति के लिए मतदाताओं को उपयोग करते हैं, संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए मुझे मंच दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
जी सर, सर लोकतंत्र में जनता की जो भागीदारी है वो किस तरीके से देखते हैं सर आप?
देखिए, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सबसे अधिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब्राहम लिंकन का जो कोटेशन है कि वो कहते हैं लोकतंत्र के बारे में कि जनता के लिए जनता का शासन, मतलब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके अपने लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती, जिसको कहते हैं सरकार। लेकिन इसमें हमारे यहाँ जो शासन चलता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय, हम तीनों व्यवस्थाओं में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, लेकिन मतदाता शिक्षित नहीं है बहुत। मतलब आज भी देखिए, अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, आज भी हम लोग सिर्फ 74% पे साक्षर है, अभी 100% साक्षरता नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक साक्षरता की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि मतदाता अपने मतदान के महत्व को नहीं समझता, इसलिए वो कभी साड़ी ले लेता है राजनीतिक संगठनों से, कभी शराब की बोतल ले लेता है, कभी 500 रुपया ले लेता है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मतदाता को पैसा वो लोग जो देंगे जो गलत लोग हैं, जो सही व्यक्ति है वो पैसा नहीं दे सकता। हमको चुनना चाहिए अच्छे लोकतंत्र के लिए सही लोगों का, लेकिन हम अपने क्षणिक सुख के लिए गलत लोगों को चुनते। और राजनीतिक, स्थानीय राजनीतिक जो नेतृत्व है, जो पैसे शराब और साड़ियों के माध्यम से अपना निवेश जो कर रहे हैं, ये इकोनॉमी की भाषा में इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतदाताओं को देते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए का कारोबार करते बाद में। और फिर हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? जब हमने गलत लोगों को चुना है तो गलत लोगों से अच्छे लोकतंत्र की, जन कल्याण की भावनाओं की, सम्मान की बात नहीं हो सकती। ऐसे इन्वेस्टर जो पैसे देके आपका मत खरीदने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, आप उनसे अच्छे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते, जन कल्याण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और प्रगति और विकास की तो बात दूर है। ये बात मतदाता को समझना चाहिए, और ये बात जिस दिन मतदाता समझ लेगा तब उसके मतदान के महत्व का, लोकतंत्र में महत्व बढ़ जाएगा। जी
जी सर। सर, एक ओर जनता की भागीदारी देखते हैं, दूसरी ओर जो राजनीतिक दल है वे अपना हित देखते हुए जिताऊ प्रत्याशी को चुनते हैं और वैसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं, तो सर इसमें भी जनता अपनी भागीदारी किस रूप में देखते हैं सर?
देखिए, संगठन चाहे जिसको उम्मीदवार बनाए, क्योंकि भारत में 8 राष्ट्रीय दल है, लेकिन हम अपने स्थानीय स्तर पे देखते हैं कि 2 ही दल हमको दिखाई देते, लेकिन भारत में 8 राष्ट्रीय दल है, 48 राज्य स्तर के, क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं। संगठन किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आजकल जो टिकट खरीदी का जो कारोबार होता है, हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए में टिकट खरीदी जाती है। मैंने कहा ना, जो व्यक्ति पैसा देके भी कोई चीज प्राप्त कर रहा है तो समझ जाइए वो बहुत गलत व्यक्ति है। लेकिन मतदाता जो है बहुत जागृत होना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि जैसे वो अपनी लड़की के लिए जब वर्क की तलाश करता है तो वैसे ही अपने भविष्य, मैं तो कहता हूँ हम जिस नेतृत्व को चुन रहे हैं वो हमारा भविष्य है, हम अपने भविष्य को कैसे तय करना चाहेंगे ये हमको मतदाता को सोचना चाहिए, संगठन पार्टी व्यक्ति जो भी हो, लेकिन संगठन पार्टी और व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता है जो स्थानीय स्तर पर विकास को महत्व दे। अभी देखिए सौंसर की मैं बात करूं तो 140 साल पुरानी तहसील है, यहाँ न जाने कितने सारे मंत्री मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कितनी विडंबना है, दुख का पक्ष है कि यहाँ के क्षेत्र इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कोई उन्नति वाला काम नहीं हुआ, ना यहाँ केंद्रीय विद्यालय है, ना यहाँ नवोदय विद्यालय है, ना यहाँ पे एक एकलव्य विद्यालय। अभी देखिए जिला बनाओ समिति ने मुद्दा उठाया था सौंसर को जिला बनाने की बात करना, हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि हमारे पास जो लोग मतदान करने की बात कहने के लिए आ रहे हैं, हमसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया। इस पूरे सौंसर तहसील के लोगों का अपमान हुआ कि उन्होंने सौंसर को जिला बनाने की बात को नकार के किसी और क्षेत्र के लोगों को समर्थन किया, और वही लोग आज यदि वोट मांगने आ रहे हैं तो हमारे किस विकास की बात वो करते हैं, किस प्रगति की बात करते हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतदाता इसको समझता है और कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का फैसला अंतिम होता है
जी।
तो ये बात आपको समझना चाहिए कि संगठन किसी भी व्यक्ति को खड़ा करे लेकिन फैसला अंतिम जनता का होता है, जनता ही निर्धारित करता है कि उसका प्रतिनिधि क्या होगा। बस मतदाता के बीच में अपनी व्यक्तिगत समझ होना चाहिए कि किसको चुनना है, और अब वो समय नहीं रहा। अब भारत का लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहा है, और यहाँ पे मतदाता एक एक छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए अपना स्थानीय प्रतिनिधि चुनता है। उसके लिए संगठन महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण ये होता है कि उसके बच्चों का भविष्य किस स्थानीय नेतृत्व में प्रगतिशील होगा, विकास का आधार बनेगा, उसको चुनता है। ये मतदाता की भूमिका होती है
जी सर। सर स्थानीय स्तर पर जो भी आवश्यकताओं की जो चीजें हो और जनता की मांग हो, उसके बाद भी जो जनप्रतिनिधि उनको किस रूप में देखता है, और साथ में सर लोकतंत्र में प्रत्येक 5 साल बाद वो अपने मत का प्रयोग कर ऐसे लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने में अपना सहयोग देता है, क्या सर
हमारे
की भागीदारी
हमारे,
जी सर
जी
इसमें
हमारा ये कहना है और, कि
जी सर कंटिन्यू
हाँ बोलिए
जनता की भागीदारी और जनप्रतिनिधियों का किस रूप में सहयोग मिल पाता है सर?
देखिए राजनीति का जो मूल उद्देश्य है जन कल्याण है
जी।
जो राजनीति सरदार पटेल साहब ने की, जो राजनीति सैद्धांतिक स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जो राजनीति का स्वरूप हमने लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा, सरदार पटेल साहब ने देखा, ये जो नेतृत्व था ये वाकई में जन कल्याण के हित को लेकर सिद्धांत की लड़ाई लड़ते थे। क्योंकि मुझे पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोधरा कांड के बाद एक बात कही थी सब जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके लिए कि आपको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म का मतलब आपका राजनीतिक कर्तव्य क्या है। तो अटल जी जो है एक ऐसे व्यक्ति हुए भारतवर्ष में कि जिन्होंने सिद्धांत की लड़ाई लड़ी, सुशासन और सुशासन की लड़ाई लड़ी। वो राजनीति का स्वरूप अब की राजनीति में हमको नहीं दिखता, यहाँ केवल व्यक्तिगत स्वार्थ दिखता है। अभी दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आई थी कि कई ऐसे विधायक है मध्य प्रदेश के जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, जिनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, जिनके अपराध पंजीबद्ध है। अब सोचिए क्या हम मतदाता गलत काम नहीं कर रहे हैं? हम अपराधियों को भेज रहे संसद में, हम अपराधियों को भेज रहे विधानसभा में, हम अपनी माँ बहनों की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था का निर्माण करते हैं, लेकिन ये स्थानीय स्तर के नेता जो है गालियां बकते हैं, मारपीट करते हैं, धमकियां देते हैं। ऐसे लोगों को क्या चुनना सही में लोकतंत्र है? मुझे ऐसा लगता है कि गुंडा तंत्र है। हमारा लोकतंत्र जो है अर्थतंत्र में कन्वर्ट हो रहा है, और यदि वो अर्थतंत्र में कन्वर्ट हो रहा है, भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो रहा है, विवेक शून्यता की स्थिति में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और आने वाले भविष्य, बात देश की नहीं है, बात प्रदेश की भी है। प्रदेश सुरक्षित होगा तो देश बनता है उससे, और देश सुरक्षित रखने के लिए हमको अपने प्रतिनिधि सही दृष्टि से चुनना चाहिए। और मतदाता की भूमिका यह है कि वो विकास को प्रायोरिटी दे। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है ढंग से, वहाँ टीचर ठीक से नहीं आ रहे, आपके यहाँ सड़कों की व्यवस्था ठीक से नहीं है, आपके यहाँ कई जगह तो पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है, फिर आप विकास किसका कर रहे? जनता का विकास नहीं हो रहा। जनता के कल्याण की आड़ में जो स्थानीय नेतृत्व है वो शराब के ठेकेदार बन रहे हैं, वो रेत के ठेकेदार बन रहे हैं, वो माफिया बन रहे हैं, गुंडा तंत्र चला रहे हैं। और इस तरह का यदि नेतृत्व हमारे प्रदेश स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे दिखाई देता है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे लज्जाजनक और शर्मनाक स्थिति है, और इसमें परिवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
जी सर, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, पर राजनीतिक दल जनता के हित कहाँ देखते हैं और किस रूप में देखते हैं सर?
जनता को देखने का जो दृष्टिकोण है वो केवल अपना हितों को ध्यान में रखते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ वर्षों से, जब से मेरे अंदर एक समझ पैदा हो गई है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे। आप खुद देखिए, कई ऐसे स्थानीय स्तर पर राजनेता है जिन्होंने, जिनके कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए अपनी पार्टी को उठाने में। मुझे याद है 1984 में जब बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब विकास, जो मतलब स्वरूप उभर कर आया, वाकई में उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना, सड़क जोड़ो परियोजना, ऐसे बहुत सारे बेसिक बुनियादी चीजों को पकड़ा जिससे वास्तव में राष्ट्र ने प्रगति की राह देखी थी। लेकिन हम लोग अपने स्तर पे देखे, क्योंकि हमने देश को नहीं देखा है, हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखा है। तो हम जब अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करते हैं तो वहां पे मूल होता है बुनियादी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अधोसंरचना कहते हैं, जिसमें सड़क, पानी, स्वास्थ्य आती, और इन ये सारी चीजें हमारे स्थानीय स्तर पर बड़ी समस्या मूलक है। केवल राजनीतिक नेतृत्व हमको कहते हैं कि हम विकास की धारा बहा रहे, कहां बह रही भाई गंगा विकास की? आप अपने हित की गंगा बहा रहे हो, आप सफेदपोश अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। और ये बात हमारा जो राजनीतिक, मतलब हमारे जो मतदाता है जिनके द्वारा सरकार का निर्माण करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत छोटे से आंशिक स्वार्थ के लिए कि भाई वो 500 रुपए ले लेगा। अभी मैं चिल्लेवानी घाटी के ऊपर वाले क्षेत्र में उस दिन दौरा कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि वहां साड़ियां बट रही है। अब बताओ, यदि हम अपना एक वो हमारा भविष्य हम साड़ी में बेच रहे हैं, 500 रुपए में बेच रहे, एक शराब की बोतल में बेच रहे, और फिर हम चिल्लाते हैं कि सड़क ठीक से नहीं है, स्कूल नहीं लगती है, टीचर नहीं आ रहे हैं, विकास नहीं हो रहा, अनाज समय पे नहीं मिल रहा है, यूरिया की कीमत बढ़ गई है, तो क्यों नहीं बढ़ेगी? आपने गलत लोगों को सुन के दिया है। आप मतदाताओं को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट की कीमत को समझिए, और स्थानीय स्तर पर योग्य और सक्षम एक नए विकल्प की तलाश करिए। भाग्य बहुत अच्छा हमारा। जी
सर। सर, महान राजनीतिज्ञ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती है, और इसमें कितना सार्थक और लोकतंत्र को में अहम देखते हैं सर?
देखिए, जिंदा कौम इंतजार नहीं करती साहब। देखिए, हमारा लोकतंत्र संविधानिक तंत्र है, यदि आप हक की मांग करते हैं तो आपको कुचल दिया जाता है। हमको तो ऐसा लगता है कि कभी कभी अंग्रेजी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि कम से कम वो गोलियां सीने में मारती थी, भ्रष्टाचार नहीं था। आज देखिए, आप तहसील ऑफिस में जाइए, आप पुलिस व्यवस्था को देखिए, अपराध पे नियंत्रण कम हो रहा है, हेलमेट को चेक करते हैं, हेलमेट को पकड़ते हैं, लेकिन जो यहाँ से बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, सफेदपोश अपराध में जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। अभी देखिए, प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता लगाई है
जी।
पर आपने देखा होगा दशहरे के दिन 12 बजे तक डीजे बजते रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 10 बजे के बाद डीजे बजना बंद हो जाना चाहिए। तो ये तो स्थानीय स्तर पे शासन व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा, प्रशासन मौन है। जिला बनाओ अभियान समिति जब शिवाजी महाराज पुतले के पास 10 बजे के 10:15 तक अपना कार्यक्रम शांति के साथ संपन्न कर रही थी, उनको शांति भंग का आरोप सोनसर पुलिस के द्वारा लगाया गया और उनको नोटिस दिए गए, तो फिर वो नोटिस तो अभी दसवीं के दिन जो डीजे बजा 12 बजे के बाद उसको भी दिया जाना चाहिए, वो भी तो शांति भंग है। तो ये जो प्रशासनिक दुर्व्यवहार है और ये लोकतंत्र में भी इस तरह की चीजें हो रही है तो पता नहीं लोकतंत्र का स्वरूप क्या होगा, ये समझ में नहीं आती। तो ऐसी इसमें हमारी जनता सड़कों के ऊपर उतर कर आती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी का जो उद्देश्य है वो सही है, लेकिन यहाँ पे जो हक की मांग करता है, अपनी बात करता है, उसको कुचल दिया जाता है, उसको असहिष्णु कह के दबा दिया जाता है। यदि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और यदि शासन व्यवस्था में कोई कौनिया इस चीज को कोई उठाता है तो उसको धमकाया जाता है।
तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर लोकतंत्र के मदारी राजनीतिक दल और उनके इशारे पर नाचने को मजबूर जनता इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। मधुकर सर मोबाइल वाणी को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी सर, नमस्कार सर।
मोबाइल वाणी से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।